نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. اپنے آپ کو پراعتماد بنانے کے لیے، اپنی پرسنالٹی کو گروم کرنے کے لیے آج کل ہم جو سیریز شروع کر چکے ہیں اس میں آج ہم تیسرا سیشن لیں گے، اور ہمارا آج کا ٹاپک کیا ہے؟ جیت کا راستہ. یہ بتائیے کہ لفظ جیت سن کر آپ کو کیسا لگا؟ جی کوئی آپ میں سے بولے. جیت یا سکسیس یا ایک دوسرے کے مقابلے میں اپنے آپ کو آگے لے کر آنا، یہ انسانوں کو ہمیشہ اچھا لگتا ہے. جی آپ کو زنیرا کیسا لگا یہ لفظ سن کر کہ آپ جیت کے راستے پہ ہیں؟ تو کیا فیلنگ آئی؟ دیکھیے ایک ہوتی ہے سکسیس، وہ آپ اکیلے بھی کر سکتے ہیں. جیت ہمیشہ کسی کے مقابلے میں ہوتی ہے. جی اور کوئی؟ جی آپ ادھر سے. خوشی کی فیلنگ آئی ہے، کچھ اچیو کرنے کی فیلنگ آئی ہے. جی اور ادھر سے فرق؟ یعنی تھوڑا پراؤڈ. پراؤڈ تو نہیں کہ، میں تو لفظ پراؤڈ کو بلیسڈ کہتی ہوں. لوگ کہتے ہیں نا پراؤڈلی وی اناؤنس دس، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم ہمبلی اناؤنس دس، لیکن ہم اس بات کو ایک بلیسنگ سمجھتے ہیں. جی آپ پیچھے سے. یعنی جیت ایک ایسا لفظ ہے جو ہر ایک کو اٹریکٹ کرتا ہے، ہم میں سے کوئی بھی ہارنا نہیں چاہتا. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ جیت کا راستہ کیسے ہے. چھوٹے چھوٹے نوٹس لیں گے آپ جملوں کی صورت میں. کسی اور نے کچھ کہنا تھا تو بتائیے، ہار نہ مانیے، بتا دیجیے. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ چلیے پھر شروع کریں. جیت کا راستہ. آپ کس قسم کے لوگوں کو پسند کرتے ہیں؟ لگی بندی ڈگر پر چلنے والے، یا ڈگر کو چیلنج کر کے اپنی ڈگر بنانے والے؟ جی جواب دیجیے. اب اس طرح تو یہ کوئی نہیں ہوگا کہ آپ سنتے جائیں میں بولتی جاؤں. اس میں تو آپ نے خود سے بھی پوچھنا ہے، اور جب کوئی پوچھے تو پھر جواب بھی دینا ہے. کس قسم کے لوگوں کو آپ پسند کرتی ہیں بشرا؟ ابھی بھی جو لوگ روم میں نہیں ہیں، میری توجہ مسلسل ان کی طرف ہے، تو پلیز آپ لوگ اپنی جگہ پہ آ جائیے. جی جی آپ نے سوال میرا نہیں سنا پورا. جی آپ ادھر سے. آپ جی آپ مریم ہیں کہ فروا؟ جی فروا. جی اور کوئی سوبھی ہے پیچھے سے آپ؟ یہ اگلی بھی ادھر کسی کی جگہ رکھی ہوئی ہے جو نہیں لوگ بیٹھ رہے، فل ان دی بلینکس لگتا ہے نا. آپ آ کے آ جائیے. جی دو طرح کے لوگ ہیں، جو ایک ہے لگی بندی ڈگر پہ. لگی بندی ڈگر کیا ہوتی ہے؟ جدھر کسی نے لگایا لگ پڑے، بس وقت کے رواج پہ چلتے ہیں. جو سب کر رہے ہیں ہم بھی وہی کریں گے. لیکن دوسرے کون ہوتے ہیں؟ جو اپنی ڈگر کو نہیں بدل، لوگوں کی ڈگر پہ نہیں چلتے، بلکہ کیا کرتے ہیں کہ ان کو اپنی طرف بلاتے ہیں. لگے بندے راستے پر چلنے والے، یا اپنا راستہ خود بنانے والے. یقیناً ہمیں یہ بات ابھی پوری سمجھ کوئی نہیں آئی، مجھے آپ کو دیکھ کر ایسے لگ رہا ہے. جو بات شروع ہوئی ہے کس کو سمجھ آ گئی؟ اتنی سب کو نہیں آئی. اس کا تھا کہ ابھی تک بریک کا اثر ختم نہیں ہوا ہم سب میں سے. ہاں دوبارہ بتا پوچھتی ہوں آپ سے، آپ کس قسم کے لوگوں کو پسند کرتے ہیں؟ کون سے ہیں بھائی؟ پہلے لگی بندی ڈگر پر چلنے والے، یعنی جو ہو رہا ہے اسی کے ساتھ چلتے جاؤ. جیسا دیس ویسا بیس کہہ لیجئے، یا گو ود دا فلو، یا لوگوں کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے ویسا کرو، یا پھر ڈگر کو اپنی چیلنج کر کے، ڈگر کو چیلنج کر کے اپنی ڈگر بنانے والے. یعنی وہ ہار نہیں مانتے، وہ گیو اپ نہیں کرتے، بلکہ جو وہ چاہتے ہیں حالات سے ویسا ہی رخ بدلوا لیتے ہیں. کتنوں کو پہلے والی لوگ اچھے لگتے ہیں وہ ہینڈ ریز کریں. اور دوسرے؟ سب کو دوسرے کیوں پسند ہے؟ تو پھر آپ خود سے پوچھئے آپ خود کو کن لوگوں میں شمار کرتے ہیں. 3 سیکنڈ دیتی ہوں، لکھیں اپنے بارے میں. سچ بولے، دیکھیے یہ آپ کے سیلف انالیسس کے سیشنز ہیں. آپ نے اپنے آپ کو ڈسکور کرنا ہے. ڈاکٹر سے باتیں چھپا لیں تو صحت نہیں ملتی. اسی طرح سے اگر آپ अपने बारे में इस वक्त नहीं जानेंगे, खुद को डिस्कवर नहीं करेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। आप मुस्तकबिल में खुद को कहाँ देखते हैं? इसके भी 3 सेकंड ले लें, लिखे कहाँ होंगी मैं मुस्तकबिल में, क्या सोचती हूँ अपने बारे में, नौकरियाँ ढूंढने वालों में या नौकरियाँ तकसीम करने वालों में? नौकरियाँ ढूंढने वाले कौन है? पहली डगर, बेचारे हर वक्त मुश्किलात में हैं। और दूसरे कौन है? जो दूसरों को नौकरियाँ दे रहे हैं, यानी कामयाब लोग हैं। मुझे कभी नहीं भूलता जब मैं रोज़गार की तलाश में सारा दिन मारा मारा घूमता रहा, जब मैं रोज़गार की तलाश में सारा दिन मारा मारा घूमता था, तपती दोपहरों में दफ्तरों के चक्कर लगाना, मुख्तलिफ साइज़ की कतारों में घंटों बर्बाद करना, इंटरव्यू के इंतज़ार में सोच के साथ बैठे रहना कि मुझे भला किसने नौकरी देनी है, कतार में लगना मेरा महबूब मशगला रहा है। अपने गांव के करीब वाक़े सुहेल टेक्सटाइल, हाजरा टेक्सटाइल के बाहर की कतार, पाकिस्तान टोबैको कंपनी के लोकल डिस्ट्रीब्यूटर के पास सेल्समैन की नौकरी के लिए कतार, लोकल वैन में कंडक्टर के तौर पर मुंतखब होने के इंतज़ार में कतार, इलेक्शन में एमपीए के उम्मीदवार के डेरे पर इसकी वॉल चौकिंग का ठेका लेने के लिए इंतज़ार, यानी छोटे छोटे काम हैं अमूमन जो कि बड़े काम नहीं होते, नेशनल फीड्स के बाहर चिकन फीड बनाने की नौकरी मिलने का इंतज़ार, क्रीसेंट बाहुमान नस्ले मिल्क पैक, क्रीसेंट बाहुमान नस्ले मिल्क पैक दाऊद हरकुलिस टोयोनासिक होंडा और रूपाली के गेट पर कई दिन मुसलसल बस की छत पर बैठकर पहुंचने के बाद खाली पेट घंटों बराबर इंतज़ार, जंग अखबार की कैंटीन पर भर्ती होने के लिए इंतज़ार, बावजूद इसके कि मेरे पास 2-2 गोल्ड मेडल थे। यानी अब एक शख्स जिसको नौकरी नहीं मिलती वो कहाँ कहाँ मारा बंदा फिरता है। किसी भी वक्त इंसान का नफ्स मोटा होता है और वो कोई गलत काम कर सकता है ना, कि नौकरी नहीं मिलती तो चोरियाँ शुरू कर देते हैं या कुछ भी, और कुछ नहीं तो डिप्रेशन में चला जाता है। ट्यूशन के लिए ट्यूशन सेंटर्स के बाहर की तार, MSc एम्प्लॉयड साइकोलॉजी कर लेने के बाद भी मुख्तलिफ अकेडमियों में पढ़ाने के लिए इंतज़ार, हक आर्थोपेडिक नाज हॉस्पिटल सुरैया अजीम हस्पताल और एक कमरे के तारिक क्लिनिक के बाहर जलती धूप में इंतज़ार, पाकिस्तान एयरफोर्स में भर्ती होने की आरजू में जानलेवा कतारें जो PAF की हदूद से बाहर सड़क तक जा पहुंचती थी, पंजाब यूनिवर्सिटी में लेक्चरार भर्ती होने के लिए इंतज़ार, लेकिन नौकरी थी कि कम वक्त मिलती ही ना थी। तब मैंने खुद से पूछा कि ऐसा मुमकिन है कि मैं इस लाइन में से हमेशा के लिए निकल जाऊं और ऐसा बन जाऊं कि दूसरों के लिए रोज़गार के मौके पैदा कर सकूं। फ़र्क समझे? पहली सूरत में एक शख्स है जो दूसरों से कहता है मुझे काम दो और दूसरे देते कोई नहीं। जब भी आप किसी के पास जाएंगे ना कि मुझसे कुछ ले लो तो लोग नखरे करेंगे, ये फितरत का असूल है। हमेशा वो लोग काम करते हैं जो खुद आते हैं कि हम काम करना चाहते हैं, हमसे काम करवा ले, यानी जब ऑपोजिट कह दिया मैंने, जब लोग आपसे कहते हैं ना हमसे काम ले लें, हमें जॉब दे दें, हम इधर पढ़ाना चाहते हैं, हम यहाँ ये करते हैं, तो आप फौरन क्रिटिकली सोचते हैं कि आखिर ये क्यों आ रहा है, इसका मोटिव क्या है, क्या इसको पैसे चाहिए, क्या इसका कोई और कंसर्न है। एक वो दूसरा पर्सन होता है जिसके बारे में आप सोचते हैं कि ये काम का बंदा है, फिर आप उसको फ़ोन करते हैं, फिर मैसेज छोड़ते हैं, फिर कहते हैं आइएगा, फिर बैठिएगा, कुछ वक्त है आपके पास। कौन खुशकिस्मत है जिसको बुलाया जाता है? तो जब आप लोगों के पास जाते हैं और लोग आपको पीछे करते हैं, और यकीन करें अभी हमारा सेटअप बहुत छोटा सा है, इधर कोई बड़ा लंबा चौड़ा मामला नहीं, इसके बावजूद अक्सर लोगों की एप्लीकेशन जो है होती है वो एक्सेप्ट नहीं होती। मैंने खुद इधर अभी आने के बाद अभी लास्ट वीक में 2-3 लोगों के साथ बात की है और फिर हमें उनको नो कहनी पड़ी है। तो पहली बात, आप सब के लिए खुशी की है कि आपको यहाँ कोई नो नहीं कहता। अपने लिए लिखिए, कौन हमें इन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने देता, और कितने को लोग चढ़ते हैं जिनको कंसर्न नहीं होता। किसी जगह आप जा सकते हैं, आप में से कितनों के पास चाबी है इस जगह की, कभी आपने इस चाबी को एक ब्लेसिंग समझा, एक मान समझा? कितने लोग हैं जब चाहें आए, रात को आए, दिन को आए, कोई उनको नहीं रोकता, कोई अलार्म, कोई खटका, कुछ भी उनको नहीं रोकता। क्या आप इसको एक नेमत समझते हैं? क्या आप और मैं मस्जिदों में भी नमाज के अलावा वक्तों में जा सकते हैं? उनके दरवाजे बंद हों तो जाके नॉक कर सकते हैं? तो क्या फिर ये अल्लाह की नेमत हमसे अपना हक नहीं लेगी? जिस तरह अपने घर की चाबी खोल कर हम रात दिन आ जा सकते हैं, बहुत सारे लोग आप में से अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल में भी आते जाते हैं, तो ये अल्लाह की नेमत है ना। जहाँ लोग आना चाहें और आपके उनकी जगह ना हो, वहाँ कोई आपको हटाना ही ना चाहे, क्या ये नेमत नहीं है? तो ज़िंदगी में नेमतों को कभी फॉर ग्रांटेड ना लें। लेकिन एक बात याद रखिए, लाइन शकर तुम ला अजीद अन्नकुम वलैन कफर तुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। अगर आप नेमत को की कदरदानी करेंगे, शुक्रगुजारी करेंगे और बढ़ेगी, और ना शुक्री करें। आज मैंने आपको पिछले सेशन में कहानी सुना दी है, अल्लाह के घर जाने की वजह से एक टीचर हटी, तो अब मुझे लगता है कि उनको आके अपनी जगह बनानी मुश्किल लगेगी। इल्ला माशाल्लाह, जो अल्लाह चाहे। तो आप और मैं अपनी जगह पे अगर जमे हुए हैं ना, तो दुआ करें कि हमारी बग़ैर लोगों को रहना मुश्किल ही लगे। किसी ने कहा, दांत टूटने की बात होती है ना, तो किसी की बात सुनी हुई, आपने भी सुनी होगी, कि जब इंसान का कोई दांत टूट जाता है ना, तो डॉक्टर्स कहते हैं कि फ़ौरन उसकी जगह पे दांत लगवा लो। भाई क्यों? कहते हैं जब जगह खाली होती है ना, तो फिर इधर का भी दांत और उधर का भी दांत उस खाली जगह को लेने के सूरत में कभी टेढ़ा हो जाता है, कभी फूल जाता है। फिर इसी तरह किसी ने कहा कि जब दांत का स्केल्टन लगवाया हो, जो एक अक्सर खोल सा होता है, तो कभी गिर जाए तो उसको इतने घंटे या एक दो दिन के अंदर दोबारा लगा लो तो वही लग जाता है, और अगर कुछ दिन छोड़ दें तो फिर वो वाला दांत पहली जगह में पूरा नहीं आता, क्योंकि इर्द गिर्द के मसूड़े फूल के वो जगह खाली ले जाते हैं। फितरत का भी यह असूल है और साइंस का भी यह असूल है कि खाली जगह खाली नहीं रहती, खला है ना, हवा आ जाती है। तो शुक्र कीजिए कि हमारी जगह है। एक औरत आज नखरा करके ज़रा अपने शौहर को दिखाए तो सही कि जो ले आओ दूसरी, एक आध दफ़ा सुनेगा और जिस दिन वो ले आएगा तो फिर हमारी जगह नहीं बनेगी। तो डर लगे मुझे भी, खौफ लगे मुझे भी, एक मिनट का फैसला होता है, लेकिन उसकी सज़ा जगहों को तो भुगतनी पड़ती है, थोड़ी सी इंसानों को ज़्यादा भुगतनी पड़ती है। तो ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी रहमत है कि कोई हमें हमारी जगह से ना हिलाए। इसको सोच कर तीन दफ़ा बल्कि गहरी सांस लेकर अल्लाह का शुक्र अदा करें। पूरे शहर में कितनी जगह हैं जहां आप बेधड़क जा और आ सकते हैं, कोई आपको पूछता नहीं है। हर चीज़ का एक इंसान के पास कुछ ना कुछ तकाजा होता है ना, तो अल्लाह ताला अपने काम के लिए किसी को चुन ले, इससे बड़ी इंसान की खुशकिस्मती कोई नहीं है। आगे चलते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स में भर्ती होने की आरजू में जानलेवा कतारें जो पीएफ की हदूद से बाहर सड़क तक जा पहुंचती थी, पंजाब यूनिवर्सिटी में लेक्चरार भर्ती होने के लिए कतार, लेकिन नौकरी थी कि कम वक्त मिलती ही ना थी। तब मैंने खुद से पूछा कि क्या ऐसा मुमकिन है कि मैं इस लाइन में से हमेशा के लिए निकल जाऊं और ऐसा बन जाऊं कि दूसरों के लिए रोज़गार मौके पैदा कर सकूं। ये सोच बड़ी शानदार थी, लेकिन इसे सोचते ही खौफ से हलक खुश्क हो गया। दिल इस सोच पे कान धरने को तैयार ही ना था। साफ लग रहा था कि मैं खुद को झूठी तसल्ली दे रहा हूँ, लेकिन जब मैंने ठान ली तो खुशहाली मेरी हम सफ़र बन गई। इस सोच को बदलने के लिए 7 साल पहले मैंने खुद से जो सवाल पूछे थे, वो सवाल आज मैं आपके सामने रखता हूँ। आप भी अपने आप सामने लिख लीजिए ये सवाल। ये तो एक दुनियादार शख्स की लिखी हुई बात है ना, हम तो दीन के लिए इन बातों को अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे सवाल तो ज़्यादा क्रिटिकल होंगे खुद से। पहला सवाल, आप ज़िंदगी से दरअसल क्या चाहते हैं? इसके नीचे थोड़ी जगह छोड़ दें। आप क्या बनना चाहते हैं? आप जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या आप अपनी जिंदगी को अपनी पसंद के मुताबिक ढालने की कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? असल में ये कीमत देना ही तो मुश्किल है। अगर आज आप इस कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं होंगे तो बाद में आपको कीमत बहरहाल चुकानी ही पड़ेगी, और वो कीमत होगी, ये बार बार टिक टिक रिकॉर्ड हो रही है, इसको प्लीज़ या तो डोर बंद करें या उसके अंदर कुछ लगाएं। आप तो नोट नहीं करते लेकिन यहाँ एक एक चीज़ नोट हो रही होती है। बीच का डोर बंद करें और उधर उसके आगे कोई कपड़ा रख दें। अगर आज आप कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं होंगे तो बाद में आपको कीमत बहरहाल चुकानी पड़ेगी, और वो कीमत होगी अपने ख्वाबों को पूरा ना कर सकने की। यानी बहुत सारे लोग हैं ज़िंदगी में, बहुत कुछ चाहते हैं। चलिए मैं आपसे और आप ख़ुद से पूछिए, आप ज़िंदगी से क्या चाहते हैं? हाथ खड़ा करें, आप अपनी ज़िंदगी से क्या चाहती हैं? जो लेना था मिल गया, जो पाना था पा लिया, जो बनना चाहती थी बन गई, जो नहीं मिलना था अब कभी नहीं मिलेगा, ये ख्याल है आपके दिल में? सच बताइए, ये आपके लिए एक सोल सर्चिंग क्वेश्चन भी है और आगे बढ़ने के लिए आपके लिए एक संगे मील भी है। जी आप
आखिरत की कमी,
आप बस दुनिया में और कुछ नहीं चाहती, सिर्फ आखिरत चाहती हैं। मैं तो ऐसी नहीं हूँ, फिर तो मेरे आपके तो ख्याल ही नहीं मिलते। इसका अंतर कि आप अपनी दुनिया की हर चीज़ से मुतमईन हैं, जो पाना था पा लिया, हाथ छोड़ दिए कि बस अब आखिरत मिल जाए, यही मुराद था आपका? हाँ ओके जी, आप इधर से नसरीन जी। नसरीन जी,
ऐसी जिंदगी चाहती हूँ जो आखिरत,
आप ऑनलाइन लिखेंगे जी,
ऐसी जिंदगी चाहती हूँ जिसका फल मुझे आखिरत
मिले। ऐसी जिंदगी चाहती हैं जो आखिरत में जिसका फल मिले जी। पीछे से आप, शाबाश, आपने अपनी क्लास में पढ़ा कि रब बना तीना फिर दुनिया हसनतम व फिल आखिरत हसनतम, तो आप सुबुल इस्लाम से आए, इसका मतलब है जी। और इधर से आप नरीन जी, बच्चों को दीन और दुनिया में कामयाब देखना चाहती हैं जी। नौशीन आप, नबी सल्लम के मिशन को अपनी आंखों से पूरा होते देखें जी। और इधर से फाइज साहब, जहाँ खड़ी हैं उससे आगे अपने आप को देखना चाहती हैं जी। आप साथ में
जी, मैंने चूंकि आज हज के बारे में भी हमने पढ़ा है, तो हज मैंने तो हज कर लिया, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह उसको कबूल फरमाए, तो मेरी इसमें लिखा है कि अपने बच्चों को भी ये हज की तालीम दी जाए ताकि वो उम्मत मुस्लिमा में हर एक पर फर्ज है
जी। हज के बारे में आपका सोच गई जी। आप इधर से मैं अबीबा, हसना दुनिया और आखिरत में और सदका जारिया छोड़ना चाहती हैं जी। सो आप इधर से सईद, लिया ब्लुवा को मैयो को मखसन अमला, ठीक है जी। आप नेक्स्ट, जी ये ऑनलाइन से भी कुछ कमेंट हैं कि वांट द बेस्ट ऑफ दुनिया एंड आखिरा, एक किसी ज़िंदगी में जिसमें कर सकती हूँ, किसी के लिए बर्डन नहीं होना, कुछ इस तरह की बात लिखिए। एक इस ऐसी ज़िंदगी जिसमें मैं, कुछ लगता है मिसिंग है या मुझे पढ़ना नहीं आ रहा, सॉरी, लेकिन बहरहाल ये अपनी ज़िंदगी की कोई बात लिखते हैं। I like to feel of achievement, यानी self, यानी आप ये sense of achievement चाहती हैं, to make myself feel worthy, society लिखना चाह रही थी, ठीक है। Wish to improve and share my experiences with others, कि अपने तजुर्बात को दूसरों से लेना चाहते हैं। देखिए यहाँ मैं आप सबको छोटा सा बता दूँ कि आप अपनी ज़िंदगी से जो चाहते हैं ना, आपको वही मिलेगा। अगर आपको भी ये लगता है ना कि जो आपने बनना था बन गए हैं, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। मैं आपके जवाब से मुत्तफिक नहीं हूँ। आपने भी कहा इनके वाला जवाब है, आखिरत मिलेगी, लेकिन दुनिया में आखिरत को पाने की कोशिशों को भी दिन ब दिन इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है। जी इधर से आप कोई बताइए, फरवा आप बताइए। जी फरवा,
दुनियावी सारी चीजें, मतलब मैं उन चीजों की ख्वाहिश करती सबसे ज्यादा। लेकिन अब जब कि मैं कुरान के साथ जुड़ गई हूँ, तो मैं पहले इसकी सोच समझ, इसको हिफ्स करना, इस तरीके से सोच रही थी, और उसके बाद तो मैं अपने आगे मैं अपने इन चीजों को चलाती।
यानी आपकी बात का खुलासा क्या निकला कि कुरान के कोर्स ने आपकी सोच बदल दी। पहले आप कुछ और आगे बढ़ने वाली थी, अब अल्लाह ताला आपको किसी और में बढ़ा रहा है। जी आप देखिए, कुरान हमारी ज़िंदगी का रुख बदल देता है। आपको दूसरे पारे पे पहुंच के इसका एहसास हो गया, तो आप सोचिए कि जब आप 30 पारे पढ़ेंगी तो आपकी ज़िंदगी में कितना बिग यू-टर्न आ चुका होगा ना। यही वो चीज़ है जो इस किताब को पढ़ने के बाद खुशी देती है, और यही वो चीज़ है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग भाग जाते हैं, क्योंकि उनको चेंज नहीं चाहिए होता। लेकिन आप अपनी ज़िंदगी से जो चाहते हैं वो लिखें, अपने रिश्तेदारों के नाम लें। आप मुझसे भी पूछिए कि मैं क्या चाहती हूँ। हम सबको एक दूसरे से सीखना है ना। अब देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि मैं पहले तो अल्लाह ताला से ये चाहती हूँ कि अल्लाह ताला प्लीज़ अभी मुझे मरना नहीं, मैं मरना नहीं चाहती। क्यों? मैं मर जाऊँगी क्या फ़र्क पड़ेगा अल्लाह को, कब्र में जाना है। यानी मुझे मरने के बाद जो एक सोच मेरे दिमाग में आती है ना, वो ये है कि बेअमली हो जाएगी, कुछ कर नहीं सकूँगी, दिमाग ख़त्म। हर चीज़ की डेथ हो जाती है ना मौत के साथ। तो मुझे ऐसे लगता है कि अभी मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ, प्लान्स हैं मेरे पास, आइडियाज़ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दूर की भी चीज़ें हैं करीब की हैं, तो मुझे ऐसे लगता है मैं करूँगी। तो मैं जब अपने मरने का सोचती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है ठंडा हो गया सब कुछ, फाइलें दब जाएंगी नीचे, कई प्रोजेक्ट अधूरे रह जाएंगे। तो पहली बात है कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी इस मौजूदा ज़िंदगी से अभी और फ़ायदा उठाऊं। फिर आप देखिए कि क्या बनना चाहते हैं दाइये दीन। इस टाइटल पे तो दुनिया की हर बड़ी से बड़ी डिग्री और हर बड़े से बड़ी चीज़ कुर्बान है कि हम क्या बनना चाहते हैं। यानी जितना ये ऑनर वाला लफ्ज़ मुझे पसंद है कि हम उस कुरान को फैलाते हैं, हम उस नबी के रास्ते पे चलते चलाते हैं और उसकी कोशिश करते हैं जिसके लिए कितने लोग महरूम हैं। तो मैं तो यही बनना चाहती हूँ जो मैं बन गई, इस पे कोई शुबा नहीं। ये वो चीज़ है जिस पे अल्हम्दुलिल्लाह वो आप कहते हैं ना कि ये पीस इधर फिट हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ज़रा इसमें चेंज करा लूँ, कोई अपना चेंज करूँ उधर। हाँ, ये मुझे बहुत शौक है कि मेरे ऊपर मैनेजमेंट की कभी कोई चीज़ ना आए और मैं सिर्फ पढ़ाऊँ। लेकिन शायद इन चीज़ों से इंसान को फ़ायदा ही होता है, ये दोनों साथ ही चलती हैं, हमेशा ही चलती हैं। खाली टीचर बन जाते हैं जो लोग, फिर वो कुछ और ही रुख बन जाते हैं। लेकिन बहरहाल ये दो आंखों वाली ही बात है। फिर आप देखिए कि ज़िंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं। मेरा दिल करता है कि मैं देखूँ कि वाकई पूरी दुनिया में इस्लाम गालिब हो गया है। यानी ये आप में से सभी कमोबेश यही चाहते हैं ना। यानी प्लान्स, ख्वाब, इरादे सब अल्लाह की किताब और अल्लाह के दीन के मुताबिक हैं। लोग कहते हैं हाय हम इन बच्चों की खुशियां देखें, हाय उसका सेहरा देख लें, उसकी शादी देख लें, उसको अपने घर में जाता देखें। यकीन करें ये सारे जज्बे जो है ना इस किताब की दावत के अंदर छुपे हुए हैं। इसलिए इंसान हमेशा इसकी फिक्र करे कि चाहते क्या। आप सब घर बैठ के सोचें, आज मैंने आपको ये पांच दे दिए सवाल, घर जाके अकेले में सोचें, गाड़ी में बैठे सोचें मैं क्या चाहती हूँ। सारा दिन घर में खाना पकाते सर पे दुपट्टा बांध के फिरना, बिस्तर पे 12 बजे तक सोना और फिर सारा दिन कामों का ना ख़त्म होना चाहती हूँ, या मैं ये चाहती हूँ कि मेरा घर दुनिया का सबसे खूबसूरत घर बन जाए। लोग मुझे कहें इसके घर जैसा घर नहीं, सजाना, साफ करना, खाना, चटनी, सैलड, रोटी, गरम, हर चीज़ जो आप सोचेंगे अल्लाह आपसे वो करा देगा। कई सिस्टर्स ऐसी हैं, मुझे एक दफ़ा मौका मिला कि कुछ हैं सिस्टर्स हैं, उनसे उनको दावत दी जाए कि बच्चे आते हैं तो आप भी आ जाइए, क्या हरज है। तो मैं सोच रही थी वो बड़ी खुश होंगी इस बात पे, लेकिन उन्होंने मेरी बात ऐसे सुनी कि जैसे मैंने उनको स्पेस शटल में जाने का कह दिया। क्वाइट कम्फर्टेबल, मुतमईन जी, ये बच्चों का वक्त होता है। तो मैंने कहा बच्चे तो पहले ही उधर हैं, अब भी आ जाए। नहीं जी, घर में बहुत काम होते हैं इस वक्त। अच्छा तो सुबह आ जाए। नहीं जी, ये यानी ऐसे मुझे लग रहा था जैसे मैं बर्फ़ की सिलों के ऊपर हाथ रख रही हूँ। तो मैंने फिर समझ लिया कि इधर अभी ज़रूरत नहीं है। कोई तलब नहीं, कोई तड़प नहीं, कोई गिल्ट नहीं, कोई किताब से ताल्लुक़ की कमज़ोरी का ख्याल नहीं, और बस मज़े से जी रहे हैं कि खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, सब्जियां ला रहे हैं, ग्रोसरियां बना रहे हैं, कर रहे हैं, और बस इंजॉय कर रहे हैं। और बच्चे तो रात को बस हमारे गुन खा के सोते हैं। कुछ औरतों ने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ खाना पकाने वाली औरत बनना सीखा है, कुछ ने सिर्फ सफाई करना है, या कुछ ने कुछ ना करके अपनी मनमौजी करना है, कुछ को शॉपिंग अच्छी लगती है। तो गुज़र तो दुनिया से वो भी जाएंगे, हम भी जा रहे हैं, लेकिन याद रखिए जो मकसद की ज़िंदगी गुजार के जाएगा ना, उसको कब्र में नींद बड़ी अच्छी आएगी। बहुत काम करने के बाद जो नींद आती है ना, वो बहुत सुकून देती है। और काम बीच में पड़े और जाके सो जाए तो फिर नींद में भी आप वो काम ही कर रहे होते हैं। दिन भर की अधूरी कोशिशें जो होती हैं ना, ये ख्वाबों की सूरत में हमारी आंखों में आती हैं। तो लिहाजा जो करना है वो आज करना है। तो फिर अगली बात है कि अगर इतने बड़े गोल हैं मेरे भी तो आपके भी, मुत्तफिक है ना आप इन गोलों से, तो फिर क्या इसकी कीमत देनी है? और कीमत क्या है? सूरत तौबा में अल्लाह ने कह दी है, इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मोमिनीना, बेशक अल्लाह ने ख़रीद ली है मोमिनों से उनकी जानें और उनके माल, के बियन लहुमुल जन्ना, मैं और आप तो जन्नत के तलबगार हैं, दुनिया में अल्लाह की रज़ा और बंदों की खिदमत के ज़रिए से और आखरत में असल जन्नत में। तो फिर जो लोग इरादे बहुत बड़े करते हैं लेकिन कीमत नहीं देना चाहते, आप अपने ऊपर लेकर सोचें। कोई चीज़ आपको पसंद आ गई बाज़ार में, कोई ले लें घर की चीज़, कोई इस्तेमाल की चीज़, पर आप उसकी कीमत नहीं देना चाहते, तो फिर क्या होते उठते बैठते? हसरत, अफसोस। कोई चीज़ आपको मिली और ऐसी थी कि फ़ौरन लेनी है, पर उस वक्त पैसे नहीं थे और वो पैसे आप थोड़ी देर पहले बेकार ज़ाया कर चुके थे। तो जब आप उधर से वापस पलटते हैं कि चीज़ सस्ती भी लगी हुई है, ज़रूरत की बहुत है, बहुत दिन से चाह रही थी, अब इधर से वापस आना भी नहीं कभी, तो वापस जब बैठते हैं गाड़ी में तो क्या? टूटे हुए ख्वाब। कुछ लोगों की कब्र में सिर्फ उनकी डेड बॉडी नहीं जाती, उनके ख्वाबों की लाशें भी दफन होती हैं। और ऐसे लोग ज़्यादा हैं जो अपने अधूरे ख्वाबों के साथ ये दुनिया छोड़ जाते हैं। फिर वही बात कहूँगी जो हज़रत इब्राहीम के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में कह दी कि इब्राहीम हनीफ थे, फोकस थे, मती थे, खुश थे, वफाओं वाले थे। आज अगर आप अपने रूल्स ख़ुद डिफ़ाइन नहीं करेंगे ना, तो अगली दौर में ज़िंदगी के आपके पास हसरतें रह जाएंगी। और मैंने अपनी पिछली पूरी ज़िंदगी में जो चीज़ सीखी है ना, अगर आप कुछ करते हैं ना, ये अल्लाह आपसे कराता है, तो ये आप अपने उन पे करते हैं। लोग आपको कभी कुछ नहीं करने देंगे, ना दीन का ना दुनिया का। लोगों से पूछेंगे ना तो लोग आपको कहेंगे कि आप बैठ जाएं अभी, अभी कुछ नहीं। बिल्कुल ये जो शख्स कह रहे हैं ना कि नौकरी करनी है कि अपना बनना है, मैंने भी बड़ी नौकरी करनी चाही कभी दीन की, लेकिन नहीं मिली नौकरी तो फिर अल्लाह ने मालिक बना दिया। ये ज़िंदगी के दुराहे होते हैं, हम सब इन चीज़ों से गुज़रते हैं। जब लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करते ना, तो फिर अल्लाह आपको एक्सेप्ट कर लेता है, ये मेरा ईमान है। शर्त एक है कि आपकी नीयत अच्छी हो, इखलास हो। आप इस कोर्स में आके बैठी हैं ना, अभी तो शुरू के दिन है ना, अगर आप इसकी कदर नहीं करेंगी ना, तो अल्लाह आपको उठा के ले जाएगा, कोई और आ जाएगा आपकी कुर्सी पे। ये कीमत आपने खुद चुकानी है। हर रोज़ सुबह एक कीमत चुका के आप स्कूल आते हैं, या वक्त पे आते हैं या लेट आएंगे, ये बाप का नसीब है, ये हर एक को सोचना है। ये एक सवाल है ऑनलाइन से कि आई हैव अ क्वेश्चन डियर उस्ताजा जी, अल्लाह सुब्हान तआला क्रिएटेड अस अ वुमेन एंड मेकिंग होम्स, home. In is in our fitrat. We are mothers and wives. How to balance between our dreams and our roles? बहुत अच्छा सवाल है कि एक औरत के लिए अल्लाह ताला ने जो घर रखा है ना, तो फिर वो आपको समझ तो आ ही गया होगा सवाल ना, कि अल्लाह ने हमें औरत भी बनाया है. अब ख्वाब हमारे मिसाल है कि दीन की तबलीग के हैं, कुरान सीखने के हैं, तो फिर बच्चों को और इसको कह रहे. बड़ा आसान जवाब है इसका, अपने बच्चों और अपने भर अपने बच्चों और घर वालों के भी यही ख्वाब बना दें, फिर तो आप दो दो हाथ से जन्नत समेटेंगे. अपने बच्चों और अपने शोहरों को भी इसी गोल पे लगा दें. ऐसे मुझे लग रहा है कि एक रोलिंग स्टोन है और आप अकेली खींच रही थी, तो जब आपके साथ चार हाथ और लग गए तो आसान हो जाएगा ना. और मैं ऐसे घरों को देखती हूँ जहाँ सब इस काम पे लगे हैं, वो जो खुशी और जो इत्मीनान होता है ना, वो है. अब आप कहेंगे ये कैसे होगा, हाउ इज़ इट पॉसिबल, तो फिर सीरत सहाबियात. ये मुझे यकीन है कि जो माँ तड़पती है ना, अल्लाह उसकी तड़प ज़ाया नहीं करता. और प्लस आपका अपने आप को बैलेंस करना, वक्त पे सोना, वक्त पे खाना, रूल्स बनाइए अपने. ये मेरे रूल्स हैं और मैं इस पे फिर फॉलो करूँगी. देखिए मैं आपको बड़ी पर्सनल सी मिसाल देती हूँ, बहुत, क्योंकि हम सब हैं और कोई इतनी पर्सनल भी नहीं, वो आप में से हर एक का इशू है. हम ख़वातीन हैं ना, तो हमें अपने घर वालों को फीड करना होता है. ये सिंपल सी बात है, अच्छी बात है अगर अल्लाह ने हमें ये ऑनर दी है कि हम अपने घर वालों के खाने पकाने के अहतमाम करें. हमें अपने घर भी तो साफ़ करने ही होते हैं ना, किचन सब कुछ आप करते हैं. अब एक है, बाद में हो जाएगा, कभी भी हो जाएगा, क्या होगा. और ख़ास तौर पे जब आप इस तरह के बाहर के कामों में पड़ते हैं तो इंतहाई अनयूजुअल हालात होते हैं ना. तो पहले इतनी सख्ती नहीं थी, लेकिन अब ये तकरीबन पिछले साल 6 महीने में मेरे हस्बैंड ने ये कहा, एक उन्होंने एक रूल डिफ़ाइन किया और वो उस पर जम गए. और वो क्या है कि मैं ईशा के बाद कुछ नहीं खाऊँगा. जैसे वो मैं अक्सर सोचती हूँ कि जैसे पहले दौर में रोज़ा था ना, कि आप मगरिब से ईशा के बीच में कुछ खा लें तो आपका रोज़ा हो गया, ईशा का वक्त शुरू तो खाना ही नहीं खाएंगे. वल्ला ही इस तरह की कसम खाई हुई है उन्होंने. और जो वो कह दें, वो कहते हैं आई विल कीप माई वर्ड्स. आप पहले क्या होता था, मेरे भी दर्स तो शुरू से ही होते हैं, क्लासें भी हैं, मीटिंग्स भी हैं, तो मुझे पता होता था कोई बात नहीं. अगर मैं अव्वल तो मैं मगरिब के बाद कहीं रहना पसंद ही नहीं करती, खुद के लिए भी और किसी के लिए भी नहीं पसंद करती, लेकिन हालात हमेशा अपने हाथ में नहीं होते. तो मैं जब जाती थी, खाना हम मिल के खा लेते थे. तो क्या होना, खाना खाना, फिर उनको लगता है कि हमेशा के बाद जब खाना खाते हैं और साथ ही सो जाते हैं तो खाना स्ट्रक होता है. और इट्स ट्रू, ये हेल्दी भी नहीं है किसी तरह से भी. किस्सा मुख्तसर, अब जब से उन्होंने ये रूल बनाया, मैं एक टांग पे चलूं, मैं गाड़ी पे जाऊं, मैं पैदल आऊं, मैंने मरते दमते जैसे भी उनको ईशा से मगरिब के बाद रोज़ा है और मगरिब से पहले ही हूं अगर रोज़ा नहीं है, तो मैंने उनको खाना देना ही होता. और मैंने देखा कि इससे मैंने हार मानी, उन्होंने नहीं मानी. वो मुझे ये भी नहीं कहेंगे कि नाराज़ होंगे, बोलेंगे अल्लाह ना करे कोई उनकी ऐसी जाहलों वाली आते नहीं है, नहीं बोलेंगे. बस उनकी मेरे लिए एक ही बहुत बड़ी सज़ा है कि वो भूखे सोएंगे. कभी वो बाहर रह गए और मैं घर में हूँ तो उसका भी यही नतीजा है. तो फिर मैं नाराज़ होंगी कि आप घर पे होते तो खाते, आप खाए. वो कहते नहीं खाऊंगा, मुझे पता भी लगेगा कि भूखी अदा से नहीं नींद आ रही, लेकिन नहीं खाते. तो मैंने अपने आप को एडजस्ट करना है, मैंने कर लिया. तो अगर वो ढीले हों, मैं कहूँ नहीं मुझे पता खा ही लेंगे, तो कभी मैं जाऊँ. ये मैं आपको सिर्फ पिछले एक महीने में 8-10 दफ़ा के अपने वाक़ा सुनाऊँ कि मैंने कैसे मैनेज किया उनको खाना देना, फिर दर्स में आना जाना क्या कुछ. तो आप कहेंगे अच्छा ये हो जाता है ऐसा. आप कहते हैं ना कि बहुत बड़े इश्यूज़ हैं कि कोई मर्द है, वो कहते हैं बहुत खाना चाहिए, हर वक्त ही चाहिए. है ना, आप में से कई लोगों को ये लगता कि हमारे जैसे एक सिस्टर हैं तो वो कहती हैं इनको तो हर वक्त खाना चाहिए, अब ये बना दो वो. तो मैं कहती हूँ खुशकिस्मत है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मेरे भैया का अगर ये खाना मिस हो गया तो इन्होंने फिर खाना ही कोई नहीं 24 घंटे. कल भी जो उन्होंने रोज़ा खोला, मेरा हाल है मोर देन 40 आवर्स के बाद खाना खाया. अब वो उनकी बात है. तो अब एक मर्द है, उसको अपना देंगे, वो 2 घंटे बचाए पी लेगा, तो वो इतना मुश्किल नहीं होता. ये बहुत मुश्किल होता है कि जिसने अब्द के बाद नहीं खाना. तो अब आप देखिए कि जो बात खुलासा था कि मेरा अब काम क्या है कि मैं उसको मैनेज कर लूँ. आज का स्केड्यूल मेरा जैसे मैं आपको बताऊं तो उसमें भी मुझे, मैं सुबह ये बात करके आई हूं कि फिर बता दें कि हमने फिर किस तरह एडजस्ट करना है. ज़िंदगी में हर वक्त तो नहीं होता ना, तो बैलेंस करें. आप अपनी ज़िंदगी को डिसिप्लिन में ले आएं, एक रूल बनाएं, फिर उस पर जम जाएं. और आपको लगता है शौहर का देर से घर आना अगर प्रॉब्लम है तो इसको डिस्कस कर लें. आपका सुबह देर तक सोना प्रॉब्लम है, इसको डिस्कस कर लें. लेकिन इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि जो बड़ा गोल है ना वही जीतेगा। मिसाल है इसका, एक जवाब इनके सवाल का मैं ये भी दे सकती हूँ कि हाँ वाकई फिर एक औरत के लिए तो ये बहुत मुश्किल है, तो फिर आप अपने ये ड्रीम्स बदल दें और बस आप अपने घर में हफ्ते की एक क्लास शुरू कर लें, जिस दिन कोई भी ना हो तो आप कर लें। इसमें भी मसले का हल नहीं होगा। मैं खुद अपने कल्चर को जितने क्लोज से देखती हूँ ना, हम सब मुसलमानों का रहना सहना, टू मैनी फ्लॉज। एक दावत से हम 12 से 1 बजे आते हैं, आप मुझे बता सकते हैं कि हम फजर पे उठते हैं तो ये तो अल्लाह ही उठाता है, तो वो नींद कहाँ पूरी होगी, वो अगले दिन 12-1 बजे उठ के होगी। और ये हमारे कल्चर में आम है, राइट? हम पाकिस्तान गए हों तो हम सारी सारी रात जागते हैं, हम दावतों में, शादियों में, मंगनियों में हो तो पूरी रात जाग कर फजर पढ़ के सोते हैं ना, है ना कि नहीं? तो अपने आप को बैलेंस करें। और वाकई मैंने आगे इसकी एक स्टोरी पूरी डिसिप्लिन पे आएगी, हम सुनेंगे इंशाल्लाह ताला। तो अपने रूल्स बनाएं फिर जम जाएं। ये जो कहते हैं ना कि इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बनल्लाह थुम्मा इस्तक़ामू, वो यही बात है, आई मेक दिस और आई विल डू इस। आप देखिए, आप में एक और इन्होंने पूछी ये बात, तो हम सब ने कहे कि ये इशू है ना, मैंने इस पर एक लेक्चर पूरा किया था, मुझे याद है ये पिछले साल में ही हुआ है, कि घर की जिम्मेदारियां और दीन को साथ कैसे चलें, बहुत प्रैक्टिकल बात हुई थी उसमें। अब मुझे इस वक्त है मेमोरी में सब कुछ नहीं है, लेकिन मैंने काफ़ी प्रैक्टिकल ऐसे ही वर्कशॉप टाइप किया था कि कैसे दीन की और घर की जिम्मेदारियाँ साथ लेकर चलें, क्योंकि उसके बगैर काम नहीं बनेगा ना। या घर वाले आपसे नाराज़ हैं या स्कूल वाले नाराज़ हैं, राइट? या आप अपने बच्चों को देख रहे हैं या अपने स्टूडेंट्स को देख रहे हैं, तो उसके लिए अल्लाह से मदद मांगे, अपने अंदर एक ताकत भरे कि अल्लाह नहीं, मुझे कम पे राज़ी नहीं होना, मुझे ज़्यादा चाहिए। अल्लाह मैंने छोटी नेकी नहीं करनी, प्लीज़ अल्लाह जी मुझे बड़ी नेकी ले मुझसे, अल्लाह ताला मुझे ज़ाया ना करे, मैंने ये नहीं करना, मैंने वो नहीं करना। आप देखिएगा कि जब आप अल्लाह से भी मान करते हैं ना, तो अल्लाह आपका मान तोड़ता तो नहीं है। हमारे एक ऐसे बुज़ुर्ग थे ख़ानदान में, तो वो बहुत अपनी बात मनवाते थे, दीन के नाते से ज़ाहिर सख्त थे, तो बच्चों से, बहुओं से, सब से मनवाते थे जो बात थी। तो एक दफ़ा हज पे जा रहे थे, यानी सऊदी अरब जा रहे थे, तो कह के गए घर वालों को, मैंने वापस कोई नहीं आना और मैंने मदीने में मरना, और दिस एंड दैट, किस्सा मुख्तसर। जो वो कह के गए, इवन जब उनका ये वक्त आना था, तो उसे एक दिन पहले अपने बेटे को भी कहते हैं बड़ी गाड़ी खाली कर लो, मेरा जनाजा मदीने में लेके जाना, मैंने वहाँ दफन होना। जो उन्होंने कहा ना, मन व अन वही हुआ। तो जो उनकी बीवी थी, जो ज़ाहिर बेवा हो गई, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे बाप ने आज अल्लाह से भी मनवा ली है, जो कहा था वो करवा लिया। तो कभी कुछ नेकियों पर अपने आप को जमा लें, डट जाएं, फिर आप देखिएगा कि उससे इंशाल्लाह कितना फ़ायदा होगा। गलत ना करें, ठीक करेंगे ना तो आपके घर वाले कभी आपको मना नहीं करेंगे। आगे थोड़ा सा पढ़ते, कितारों में लगकर इंतज़ार करने में आखिर क्या बुराई है? क्या सभी लोग कितार के शुमार में से निकलकर अपनी मनपसंद जिंदगी को पा सकते हैं? क्या कितार के इंतज़ार से निढाल हर शख्स अपनी ज़िंदगी को ख्वार होने से बचा सकता है? हर किसी का मुझे पता नहीं, लेकिन कम से कम आपके बारे में मुझे पक्का यकीन है, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? मुझे कैसे यकीन है, इसका जवाब बहुत आसान है। पहले ये बताएं कि सवाल समझ आए, यानी ये जो पीछे इनकी एक बड़ी मिजरेबल सी कंडीशन हमने देखी कि कितारों में लगे रहे, तो क्या ये कोई बुरी बात है? जॉब का इंतज़ार करना या जॉब ढूंढना कोई बुरी बात है? और क्या लोग जो कितार से निकल जाते हैं कि हम अपने लिए अब काम खुद करेंगे, तो क्या वो फिर बहुत खुश होते हैं? और क्या इंतज़ार के, ये कितार के इंतज़ार से निढाल शख्स जो है वो अपनी ज़िंदगी को ख़राबियों से बचा सके? यानी ये कुछ सवाल हैं। तो कहते हैं कि कोई और करे ना करे, लेकिन आप ये काम कर सकते हैं। कैसे? जवाब बड़ा आसान है। इस वक्त आपका ये किताब पढ़ रहे होना इस बात की दलील है कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ कर गुज़रने के आरजूमंद हैं। आपके ख्वाब अभी ज़िंदा हैं। आपकी रातों की नींद में किसी ख्वाब की चाप अभी भी आपकी नींदें उड़ा देती है। अभी तक अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की लगन आपके रगों पे में रक्स कर रही है। आपकी सलाहियत अभी भी ख्वाहिश की चाबुक की मुंतज़िर है। यानी खुलासा क्या है कि इस वक्त आप में ये क्यों पढ़ रहे हैं? आप सारी क्लासेस को इधर जमा करके क्यों बिठा दिया तरबिया के लिए? تفسیر کرتے تجوید کرتے کچھ فائدہ ہوتا نا. ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں اپنی شخصیت کو بدلنا ہے، ہم اپنے لوپ ہولس کو دور کرنا چاہتے ہیں. جب ایک بندہ اپنے آپ کو سنوارنا چاہتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھولتا ہے. تو کریں کیا، کرنا کیا ہوگا مجھے؟ اس کا جواب، آپ کو محض قطار بدلنی ہے. غلط قطار سے نکل کر صحیح قطار میں آنا ہے، ایک نیا سفر شروع کرنا ہے. مایوسیوں کی قطار سے نکل کر امیدوں کی قطار کی طرف. اگر آپ مایوس ہیں نا اپنی زندگی سے کہ میرے حالات نہیں سنورنے، میں نے کچھ نہیں زندگی میں کرنا، تو نکلیے اس لائن سے اور چلیے ایک اور لائن میں جہاں بڑی امید ہو. بے نامی کی قطار سے ناموری کی قطار میں جانا ہوگا. آج آپ بے نام ہیں، آپ کے نہیں، میں نے ایسا نام پیدا کرنا ہے کہ وجل لسان صدق فی الآخرین، کہ اللہ میرے بعد میرا ذکر خیر پچھلوں میں ڈال دے. نیت تو کریں، اللہ کام دیکھیے کیسے آپ کے بنواتا ہے. اندھیروں کی قطار سے اجالوں کی قطار میں جائیے. کیوں پریشان ہو؟ قبر کے اندھیروں میں تو جانا ہی ہے، اس سے پہلے کیوں مایوس ہو ہم؟ بھاگنے والوں کی قطار سے ڈٹ جانے والوں کی قطار میں جائیے. کتنے کم ہمت لوگ ہوتے ہیں جو ہار مان لیتے ہیں، دوسرا تو بعد میں آپ کو ہراتا ہے نا. دیکھیے، ایک ریس شروع ہوئی، 6 لوگ شروع ہوئے، کچھ چلے شروع تک، آدھے تک پہنچے، ایک نے کہا نہیں آئی کینٹ گو مور فردر، یا میں آگے نہیں جا سکتی، رک گیا، چلا گیا. دوسرا کہتا ہے اتنوں میں میں نے کہاں جیتنا ہے، وہ بھی رک گیا. پیچھے 4 رہ گئے. 4 جب آگے گئے تو اس نے سوچا رہ گئے ہم 4، تو اب تو چانس اور کم ہے اور ہمت میری ختم ہے، تو میں ہینڈز اپ کر دیتا ہوں، نکل گیا. پیچھے رہ گئے 3. 3 میں سے وہ کہتا ہے کہ اب تو اور بھی مسئلہ ہے، اب تو ہمت اور ٹوٹی ہوئی ہے، تو چھوڑو، جو سب کا ہوا ہے تو بہتر ہے میں خود ہی ہینڈز اپ کر لوں، بعد میں کتنی شرم آئے گی اگر میں ہار گیا اور ان 2 میں سے کوئی جیت گیا، وہ بھی ہٹ گیا. پیچھے کون رہ گئے؟ 2. اب اس 2 میں سوچے کوئی، اوہو اب تو میں اور نمایاں ہو جاؤں گا، اب تو یا یہ جیتے گا یا میں جیتوں گا. تو وہ کیا کرتا ہے کہ میں چھوڑ دوں؟ کہتا ہے نہیں، جو مرضی ہو، میرا نام کم از کم یہاں تک تو آئے گا نا کہ میں دوڑ کے آخری راؤنڈ تک تو پہنچا. اب وہ جیتے یا دوسرا جیتے، فرق تو صرف چند لمحوں کا ہی ہوگا نا، کوئی فیو سیکنڈ پہلے چلا جائے گا تو کوئی بعد میں، لیکن جو پہلے ہی مرحلے میں راؤنڈ سے نکل گئے ان کا نام آئے گا کہیں؟ آپ نے کئی ایسے گیمز سنے ہوں گے، اولمپکس، فلاں ملک اس جگہ پہنچ گیا، پھر دوسرا وہاں، پھر سیمی فائنل، پھر فائنل، پھر پتہ نہیں کیا کچھ، پھر انڈیویجولس میں. تو آپ ہار نہ مانیں. جو لوگ ہار جاتے ہیں ان کو کبھی کوئی جتا نہیں سکتا. ہمارے والد کہا کرتے تھے ایک بات، کہ جو گھر سے ہارنے کی نیت سے جائے گا اس کو کون جتائے گا؟ اگر آپ پہلے ہی کہتے ہیں میرے سے تو کبھی کچھ ہونا ہی نہیں، میں تو نکمی، میرا تو کوئی کام ہی نہیں، مجھے تو کسی نے آج تک کچھ کرنے ہی نہیں دیا، کسی نے کنسیڈر نہیں کیا. ایک کسی ملکی بات سے یاد آ گئی، ایک ساتھی تھی، میٹنگز ہوئی، میٹنگ تھی تو اس میں ہم سب ساتھی تھے. ہماری ایک ساتھی جو والنٹیئرس میں تھی وہ بہت بولتی تھی، ویری پٹاک، جس سے آپ کہنا چاہیے کہ فوراً بولتی تھی، ٹاکیٹیو بھی تھی، ہر چیز تھی. تو میٹنگ میں کئی مشورے ہونے تھے، چپ، ایسے لگے یہ وہی نہیں ہے، بولی نہیں، پوچھے چپ چپ. مجھے ایک بگ چینج فیل ہوا کہ یہ وہاں باہر تو یہ بڑی پٹ پٹ بولتی ہیں، یہاں ان کو کیا ہوا ہے؟ تو جب اینڈ پہ پوچھا تو آپ کہتے کیا ہوا؟ کہیں گے استاذہ میں گھر میں سب سے چھوٹی تھی، آج تک کبھی کسی نے گھر کے کسی کام میں مجھ سے مشورہ نہیں لیا. سمجھ گئے؟ گھر میں جو بھی بھائی بہنوں کے، ماں باپ کے، جو مجھے کسی نے یہ کہا یہ سب چھوٹی ہے، تو کہتی آج تو مجھے پورا وقت یقین ہی نہیں آیا کہ میں میٹنگ میں بیٹھی ہوئی ہوں. بس سمجھے، یعنی وہ ان کو یہ حیرت ہو رہی تھی کہ آج مجھے اتنی عزت مل گئی کہ میں مشورہ دوں. کہتی مجھے مشورہ دینا ہی نہیں آتا، اور اٹس ٹرو، یہ بالکل ایک ریئل انسان کی کہانی ہے، ہم سب کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو آپ اپنے آپ کو نکالیے اس چیز سے، ہم نے کیا مشورہ دینا ہے، ہمیں تو عقل ہی کوئی نہیں، مجھے تو سمجھ ہی کوئی نہیں، مجھے تو بات ہی بات میں سمجھ آتی ہے، मैं क्या करूँगी? तो फिर प्लीज़ वाकई आप कुछ नहीं कर सकते, को कर भी लेंगे ना तो आपने कहना ये किसी और ने कर दिया होगा, ये मैंने नहीं किया। निकले सोच से आपके, नहीं मैं कर सकती हूँ। क्या करना है आपने? गुजारा करने वालों से निकल कर शाहकार बनाने वालों की कतार में जाइए। मैं कहती हूँ ये गोल्डन वर्ड्स हैं अगर आपने अपने दिल की तख्तियों पे लिख लिए। क्या ज़िंदगी सिर्फ गुजारने के लिए आपने ली है अल्लाह से? शाहकार, ये मैंने अपने फ़ोन पे कल से एक तस्वीर सेव की हुई, आपको भी दिखाती हूँ। और मैंने इसको क्या कहकर सेव किया हुआ है कि मास्टर पीस ऑफ अल्लाह सुभान अल्लाह। यानी अल्लाह ताला ने तो किसी चीज़ में कमी ना की, हम कमी कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हमने यकीन रख लिया कि बस हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। आप कहिए नहीं, मैंने गुजारा नहीं करना बल्कि मैंने हर चीज़ को उसकी एक्सीलेंसी पे लेना है। ये देखिए आप, आपको दिखेगी भी नहीं इतनी दूर से, दिख रही है दूर से कुछ? ये देखिए, इसकी आंखें देखें, इसके होंठ देखें, इसकी पोनी देखें ज़रा, ऊपर सर के ऊपर बड़ी पोनी है। तो मैंने इसको क्यों किया भला? ये मेरे अब स्क्रीन सेवर पे सेव है। मैंने कहा अल्लाह मैंने भी तुझे ऐसे ही काम करके दिखाने हैं जैसी तूने ये बच्ची बनाई है। क्यों गिव अप करें? मैं क्यों पीछे रहूं? शक्ल की खूबसूरती की बात नहीं होती, उस मालिक का टेस्ट कितना खूबसूरत है। मैं इसकी एक एक चीज़ देख रही थी गौर से, तो मैं कह रही थी मालिक तेरा टेस्ट कितना प्यारा है। देखिए किसी को पता ही नहीं होता ब्यूटी क्या होती, तो वो करेगा क्या? किसी को कपड़े सीने बनाने, टेस्ट ही नहीं अच्छा तो वो कितने को अच्छे कपड़े पहन लेगा? और पहन के करना कैसे, होना कि नहीं आता ना। अल्लाह का टेस्ट कितना प्यारा है, तो उसको मेरा ये टूटा फूटा काम कोई मुतासिर करेगा? टांग नहीं है तो बाजू नहीं, बाजू है तो हाथ नहीं। कोई बच्चा तो पैदा करके देखे, अल्लाह ना करे ऐसा बच्चा पैदा हो जाए हाथ कोई नहीं, पीछे सार की खोपड़ी के पीछे वाला हिस्सा गायब है, उंगलियां कोई नहीं, अच्छा लगेगा? पिछली कहानी में पढ़ा कुबड़ा बादशाह, सुने ना? तो जब कोई ऐसी चीज़ ज़िंदगी में आती है तो हम उससे मुतासर नहीं होते, तो फिर मेरा अल्लाह के रास्ते की भाग दौड़ करना कैसा है? किसी दिन उंगली गायब, किसी दिन पाँव कोई नहीं, सार तो बहुत ही कम है, कभी आंखें कोई नहीं, कभी कान कोई नहीं, क्या पेश करूंगी अल्लाह को? देखिए ना इस बच्ची को आपने जहन में आइडियल बनाया, ये अल्लाह ने हमें दिया, तो हम अल्लाह को क्या दे रहे हैं अपने नाम पे? मैं इसको देख रही थी तो वो यास नॉर्मल की बात याद आ रही थी और मुझे एनर्जी मिल रही थी इसको देखकर। मैंने कहा अल्लाह इंशाल्लाह तुझे तेरी शान और तेरे जमाल और तेरे कमाल के मुताबिक काम करके दिखाना है, बस तुम्हारा हाथ पकड़ ले। और ये कब होगा? जब आप मायूसियों से निकलेंगे। आप कहते दूसरा पारा, मैंने कहा तीसवें पारे पे पहुँच दें, निकल दें, छोड़ दें। सूरत बकरा की तकमील के साथ आपकी भी तकमील हो गई, ख़त्म, छुट्टी, मौज मस्ती। बहुत सारे लोग निकल जाते हैं, एंड पे वही बचते हैं जिनको अल्लाह ने बचाया होता है। तो हमेशा अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल करना सीखें। आपके आसाब जो है ना वो थक जाएंगे, लेकिन आपने कभी भी हार नहीं माननी। जिस दिन आपने कतार बदलने का फैसला कर लिया उस दिन ज़िंदगी बदल जाएगी। चलिए अब आप बताइए मुझे, आप में से किस किस ने कतार बदलने का फैसला कर लिया? वो हाथ खड़े करें। और कुछ ने तो वैसे ही खड़े हो जाना क्योंकि एक बजने लगा जी। सच बताएं, ऐसे ना हाथ खड़ा किया करें बगैर सोचे। मैं नहीं करते ऐसे खड़ा हाथ। अगर मैं किसी को ये भी लिखूंगी ना आई लव यू, तो मैं 10 दफ़ा पहले सोचूंगी दिल में है मोहब्बत, फिर लिखती हूँ, वरना मैं नहीं लिखती जी। अब बताइए कितने लोगों ने सोचा कि वो हाथ खड़ा करें? जो ऑनलाइन वाले वो अपने हैंड रेस कर दें। आप में से चंद लोगों ने भी सोचा, सब ने नहीं सोचा, कोई बात नहीं जी। सईदा आपने क्या सोचा अपने बारे में? देखिए वही नुक्ता आगाज होता है, इरादे से ख्वाहिश तक। एक लेक्चर है बहुत पुराना, मुझे याद है, दिल बदलने की दिल बदले सीरीज थी कोई, इरादों से ख्वाहिश। कुछ लोग इरादे कोई नहीं करते, कुछ इरादा कर लेते हैं خواہش تک بھی پہنچ جاتے ہیں لیکن اس کے بعد عزم تک نہیں پہنچتے. تو ارادہ جس نے نہیں کیا وہ تو جائے چھٹی, چار منٹ رہ گئے ہیں آپ جا سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پھر مزید وقت دینا پڑے گا. اور وہ کیسے, آپ جہاں ہیں جس حال میں ہیں اور جو بھی کام کر رہے ہیں, ہر ایک اپنا اپنا پوچھے خود سے, آپ جہاں ہیں جس حال میں ہیں اور جو بھی کام کر رہے ہیں, اس کام میں اس پائے کی مہارت, لکھیے مہارت, ایکسیلنسی. مہارت کیا ہوتی ہے بلا؟ مہار سے. کس کی ہوتی ہے مہار؟ اونٹ کی. جس کے ہاتھ میں اونٹ کی مہار آ جاتی ہے نا, اونٹ سارا اس کا, کیا قافلہ سارا اس کا. تو مہارت کیا ہے کہ بس چیز کی وہ مہر پکڑ لو, مہرے پکڑ لو اس کے. صلاحیت اور خوبصورتی پیدا کریں. میں اس جملے کو پھر بولتی ہوں, آپ جہاں ہیں جس حال میں ہیں اور جو بھی کام کر رہے ہیں, اس کام میں اس پائے کی مہارت, صلاحیت اور خوبصورتی پیدا کریں کہ یہ کام اس سے پہلے اس جذبے سے کسی نے نہ کیا ہو. یعنی آپ اپنے جذبوں کو بلند کریں, پھر اپنے فرض کی سرحدوں سے آگے نکل کر, یہ جملہ لکھیں ذرا, اپنے فرض کی سرحدوں سے آگے نکل کر, دوسروں کی توقعات سے بڑھ کر کچھ خاص کر کے دکھائیے. یعنی جو فرض ہے وہ تو کرنا ہی ہے, مارے باندھے فرض تو چار ہم نے پڑھنے ہی ہیں, فرض اوپر پڑھ کے دکھائیے, سنتیں پڑھیں, نفل دکھائیں, دین کے وہ کام جو آپ کے سر پہ لگا دیے گئے نا, جو آپ کی ذمہ داری ہیں, جو آپ انچارج ہیں اس چیز کے, آپ ایڈمن ہیں, وہ فرض ہے. جو آپ کا نام ڈیوٹی لسٹ میں آ گیا وہ فرض ہے, مانتے ہیں؟ جس جس جگہ آفس میں, درس میں, جہاں بھی آپ کا نام لگ گیا وہ آپ پہ فرض ہے, آپ تو اس سے اوپر بڑھ کے دکھائیں. ہم کہتے ہیں اللہ کی پناہ اس کے اندر ہی کمیاں کر لیں. کتنے لوگ ہیں جو اپنی ذمہ داری کر کے دوسری بھی کرنا چاہتے ہیں کہ چلو آج اللہ کچھ سنتیں بھی ادا کرتی ہوں, کچھ نفل بھی پڑھتی ہوں. جس طرح نماز اور عبادت کے فرض سنت نفل ہوتے ہیں نا, اس طرح اللہ کے کاموں کے بھی فرض سنت نفل ہوتے ہیں. چلو آج میں دوسرے کا ہاتھ بٹا دیتی ہوں, شرط یہ کہ میرا اپنا نقصان نہ ہو, آج میں دوسرے کو ایک ہاتھ دے دیتی ہوں. پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر انشاءاللہ اور زیادہ فائدے آئیں گے, اور زیادہ آپ کے اندر خوبصورتی آئے گی. تو کیسے کرنا ہے کہ جیسے کسی نے نہ کیا ہو. جب آپ فرض کی سرحدوں سے آگے بڑھیں گے, بڑی خوبصورت بات ہے یہ, جب آپ فرض کی سرحدوں سے آگے بڑھیں گے تو وہاں کوئی رش نہیں ہوگا, کوئی قطار نہیں ہوگی. بھلا کیوں, کس کو یہ جملہ سمجھ آیا؟ فرض پورے کرنے میں تو بہت لمبے سارے لوگ لگے ہوں گے, تو آپ کو لائنیں لگانی پڑیں گی, انتظار کرنا پڑے گا, رش بہت ہوگا, لفٹ ہی ہو سکتا ہے بند ہو جائے, کچھ بھی ہو, لیکن فرض سے آگے بڑھنا, ہر ایک ہو ہی کوئی نہیں, وہاں آپ اکیلے نہیں ہوں گے, کوئی بھی نہیں ہوگا. آپ کہیں گے آج اللہ یہ کام میں نے اکیلے تیرے لیے کرنا ہے, کیونکہ ہے ہی کوئی نہیں, سب چلے گئے, تو میں نے یہ مور دین ایکسٹرا کرنا ہے. سمجھ آئے؟ جو کام دوسرے نہ کریں وہ آپ کریں. ابو بکر لوگوں کے گھر صاف کراتے تھے, راتوں کو پانی بھراتے تھے, صفائی کر کے اس ہینڈی کیپ عورت کے پاس کھانا رکھاتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ میں وہ نیکی کروں جس نیکی کے کرنے میں رش نہ لگاؤ. بہت سارے کرتے ہیں تو ہمیں اپنی نیکی نظر بھی کوئی نہیں آتی. اب آخری لائنیں ہیں, گزارا کرنے والے کتاروں میں کھڑے رہتے ہیں. اگر آپ نے اپنی زندگی سے صرف گزارا کرنا ہے نا, تو بس ساری زندگی پھر ڈانٹ ہی کھاتے رہیں گے اور سنتے رہیں گے, یا غصے میں پھر آپ دوسروں کو سنا دیں گے, پہلے کھائیں گے پھر کھلا دیں گے. ایسے ہی ہوتا ہے نا, جو ہمارے ساتھ کوئی کرتا ہے وہ بعد میں ہم جا کے گھر والوں سے کراتے ہیں. شوہر ڈانٹتا ہے تو بچوں کو ہم ڈانٹ لیتے ہیں, ساس غصہ کرتی ہے تو ہم اس غصے کو میاں پہ کر دیتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں نا. تو اگر گزارا کرنا ہے نا تو کتاروں میں کھڑے رہتے ہیں, جبکہ کر دکھانے والے قطار سے آگے نکل کر اپنے خوابوں کا رخ کرتے ہیں, اور پھر قطاریں ان کے تعاقب میں لگ جاتی ہیں. سمجھ آ گیا جملہ؟ دوہرا دوں. گزارا کرنے والے قطاروں میں کھڑے رہتے ہیں, جبکہ کر دکھانے والے قطار سے آگے نکل کر اپنے خوابوں کا رخ کرتے ہیں. और फिर कतारें इनके ताकुब में लग जाती हैं। यानी कुछ लोग हैं जो लाइनों में लगे हुए हैं कि हमारे लिए खिड़की खोले, और कुछ के लिए खिड़कियां खोल कर आवाज़ लगती है कि तुम आ जाओ, और वो अल्लाह की तरफ से होती है। वल्लाहु यदूकुम इला दारुस्सलाम। कौन सी कतारें लगेंगी फिर? मीडिया की कतारें, परस्तारों की कतारें, मवाक़े की कतारें। मवाक़े क्या होते हैं? अपॉर्चुनिटीज़। और फतूहात की कतारें, आप फातह बनेंगे, आप कामयाब होंगे। क्योंकि जो लोग अपने काम को गुजारा समझकर करने की बजाय अपनी पहचान के ज़रिए का इजहार बना लेते हैं, इन्हें कभी कतार में नहीं खड़े होना पड़ता। ऐसे लोगों को इनसे पहले कतार में मौजूद लोग खुद पीछे हटकर आगे जाने का रास्ता फराहम करते हैं। क्योंकि गुजारे की दीमक जिन लोगों के हुनर को मुसलसल खोखला कर रही हो, वो कभी भी अपने काम से मोहब्बत करने वालों के अपने काम से मोहब्बत करने वालों की तख्लीकी बुलंदी का मुकाबला नहीं कर सकते। फैसला बाप के हाथ में है, कतार में रहना है या आप खुद बताएं। ये आखिरी बात अब आप मुझे समझाएंगे भला, इससे क्या समझ आई? जी इधर से आप बाजी, आप बात शुरू करें। नहीं, कितार बदलनी है।
नहीं उस्ताद जी, अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मैं जिस कितार में लग गई हूँ, अपने अल्लाह की राह में, कुरान की कितार में,
नहीं यहाँ उस कितार की बात नहीं हो रही।
नहीं, दुनिया की जो भी दुनिया की भी चीजें हैं उनके अंदर भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो जो पहले वाली एक कितार थी उससे छोड़ के मैं दूसरी कितार में ऑलरेडी कोशिश कर रही हूँ आने की। तो आज के लेसन से, आज के इस सेशन से मैंने ये सीखा है कि मेरे अंदर और उम्मीद आई है, हिम्मत आई है कि मैं कर सकती हूँ।
और आपको अपने इस फैसले पर कि आपने गुजारे से निकल कर आला दर्जे के काम करने हैं, खुशी का एहसास हुआ? सुनते ही एकदम दिल बदल जाता है
जी, हिम्मत आ गई है।
देखिए आप देखिए कि ये जो बात है ना आखिरी, कि आप जब गुजारे का काम करना चाहते हैं ना, तो लोग आपको कहते हैं लाइन में खड़े हो जाए, बैकअप, सब्स्टिट्यूट, चलें जब कोई नहीं होगा तो आपको फ़ोन कर देंगे। और जब आप एक क्वालिटी बन जाते हैं ना, तो लोग आपको आता देख कर कहते जी आपके होते हुए अब हम ये कैसे करें। तो किस में ऑनर ज़्यादा है, खुशी किस में है, सेटिस्फेक्शन किस में है? और मेरा लगे ये पैगाम हम में से हर एक के लिए, आप तालिब इल्म में, आप स्कूल में कुछ काम कर रहे हैं, आप ज़िंदगी की किसी फील्ड में भी चले जाएं, वक्त का दरिया आपको रोंद के चला जाएगा। दरिया भी रास्ता बदल लेते हैं पत्थरों को देखकर। आज किसी ने आपको इस कुर्सी पे बिठा भी दिया ना बहुत इज्जत देकर, वल्लाह ही ज़्यादा दिन आप नहीं बैठे रहेंगे अगर आप सिर्फ चल चलाओ करेंगे। कितने को दिन को ना, अपनी माँ नहीं नखरे देखती किसी के, कहती है बैठो फिर मौज करो, नहीं खाते तो ना खाओ। तो अल्लाह ताला तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, इसीलिए हमें जाने नहीं देता। मैं अक्सर सोचती हूँ कि अल्लाह हमारे इतने गलत कामों के बावजूद हमें जाने नहीं देता। और आप सोचिए कितना खून जलता है उन लोगों पे जो जानते बूझते घर बैठे रहते हैं। उनको ये यहाँ आकर जो आपको मिलता है वो यहाँ से दूर रहकर नहीं पता चलता। जी आप सही था। जी
उन्होंने चखा ही नहीं।
देखिए आपने भी और आपने दोनों ने एक बात की ना कि जिन्होंने चखा ही नहीं है उनको तो आपके बकौल पता ही नहीं आपको क्या मिलता है। मैं तो उनकी भी बात करती हूँ जो आते हैं तो फिर ढीले आते हैं, या आते हैं तो नहीं आते। उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? जी दे दीजिए
बच्चे
जी, ऑनलाइन वाले भी लिखें अपनी शेयरिंग करें।
ये भी हमें इस तरह लगता है कि जैसे हम समझते हैं कि मैं बहुत कुछ कर रही हूँ, हालांकि वो इस काबिल नहीं होता कि वो किसी अगले लेवल पे जाए, किसी की पसंद का बने और अभी जैसे बात हो रही थी कि अल्लाह सुब्हान व तआला का टेस्ट क्या है और मैंने किस तरह करना है, और उससे तो फिर बड़ी ज़हन में शर्मिंदगी आती है कि जो किया है जो कर रही हूँ वो तो इस काबिल भी नहीं है कि किसी इंसान के सामने पेश कर सकूँ, तो अल्लाह सुब्हान व तआला की तो ज़ात ही बहुत बड़ी है।
बिल्कुल।
लेकिन जहाँ पे एक तरफ से मायूसी आती है, जब मायूसी आती है तो मैं यही कहती हूँ कि ये मेरे पे शैतान का हमला है, मैंने मायूस नहीं होना, मैंने कोशिश जारी रखनी है। तो इंशाल्लाह कोशिश जारी रखेंगे तो अल्लाह के हुक्म से फिर उस लेवल पे पहुँचेंगे ज़रूर, चाहे इस दुनिया में पहुँचे चाहे उस दुनिया में पहुँचे।
देखिए बस हमने अपनी कमियों को कैसे पूरा करना, कि जब हम पहले अपने गोल तो बड़े करें, जब गोल ही गुजारा है तो शाहकार काम कैसे होगा। जी आप माइक दे देंगे।
इस बात से ये बात करूंगी कि ये बच्चा मेरा अभी छोटा सा 19 साल का था, तो एक दिन अपने काम के लिए वो खीवी पर गया, तो उस बंदे ने कहा कि ये मैंने देखनी भी नहीं आई है आपके जो काम के लिए वो लेके आए हैं। तो उसने उस दिन से सोचा था कि आइंदा मैंने किसी के पास अब काम के लिए नहीं जाऊंगा, खुद कोशिश करूंगा और अल्लाह के हुक्म से आज वो क्राफ्टिंग यूनिवर्सिटी में डॉक्टरी के लिए चला गया। छोटी सी कोशिश, उसका राधा भी नहीं था पहले, उस दिन से उसने अपना राधा बदला। और कल उसने फोन किया कि मामा जी उस सर जी को कहना कि मुझे ना वो कार्ड्स भेजे जो नाम मुस्लिम को देने हैं वो मुसलमान, और मैं साथ साथ ये भी कोशिश करूंगा कि
ये ले आपके लिए रखे हुए। अल्हम्दुलिल्लाह कल एक घर ये स्कूल का देने गए तो ये तो घर देखने गए थे तो सर वहाँ लोगों को काट देते रहे, जब जा रहे थे मैंने कहा केदार हैं तो वो बैग ढूंढ रहे थे, तो मैं समझ गई, तो वो आप लोगों ने तो फील ही नहीं किया, तो जो वहाँ और लोग विजनिंग पे आए थे तो वो सबको लाइफ इज़ नॉट अ गेम देकर आए, आपको घर मिले ना मिले लेकिन उनको उधर मिल गया, इनको इसमें जितने चाहिए दे दें, बाकी रिसेप्शन पर रख लें। जी ऑनलाइन वालों की भी थोड़ा सा पूछते हैं हाल चाल। गुजारे का काम नहीं करना, यानी काम अब करना ही नहीं, गुजारे का भी छोड़ देना, किसी ने ये तो नहीं सीखा कि फिर गुजारे का भी नहीं करना। हमें अभी तक अवेयरनेस नहीं आई 100%, अभी खुद की कीमत भी नहीं पहचानी, और अल्लाह ने जिस काम पे लगाया हुआ है उसकी भी कीमत नहीं पहचानी, ये 100% सच है। जब कीमत का पता लग जाता है तो आप उस चीज़ को बड़ा छुपा के रखते हैं, कहते हैं ये असली है नकली नहीं है, वल्लाही हमने अभी तक खुद को असली समझा ही नहीं है। अपना मुहासबा ज़रूरी है। ये लिखती हैं कि उस्ताजा जी इस बात पर शर्मिंदगी भी होती है, कभी मायूसी सताती है कि मेरे से ये काम खूबसूरती से नहीं हो रहा। तो मायूस नहीं होना, बस आप इस मायूसी की कतार से निकल कर उम्मीद की कतार में आ जाए। तो ये जो कतारें बदलनी है ना, ये हमने अपने ख्यालात की कतारें बदलनी है, काम नहीं बदलने, सोच बदलनी है, और फिर आप देखिएगा कि एक खूबसूरत ज़िंदगी आपका रास्ता देखेगी। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। और किसी को कुछ कहना है या पूछना? चलिए फिर इससे आगे चलेंगे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व तुबु इलैक, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला खैरि खल्क़िही व असहाबिही अजमाईन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। नमाज का वक्फा लेते हैं, आप लोग सब जमात के लिए खड़े हो जाएँ।